हम वाल्मीकि रामायण से कुछ कथा का अमृत श्रवण करेंगे। ये जो प्रसंग है अरण्य कांड का है, जब रावण मारीच के पास आता है किस लिए? सीता के हरण में सहायता करने के लिए। तो मारीच ने जो बातें कही राम के बारे में रावण से, बड़ी आकर्षक हैं बातें, बड़ी बड़ी मार्मिक हैं। तो इसको हम सुनेंगे। रावण ने जब मारीच से प्रस्ताव रखा, क्या? सीता के हरण का। तो मारीच महात्मा है, मारीच को कहा है महात्मा। क्यों? राम से डरते हैं, राम की शक्ति को जानते हैं। जो व्यक्ति राम की शक्ति को जानता है वो महात्मा है। यद्यपि राक्षस है मरीच, लेकिन राम की शक्ति को जानता है कि राम की शक्ति का कोई अंत नहीं है। तो रावण के मुख से राम की चर्चा सुन करके महात्मा मरीच का मुख सूख गया। वो भय से थर्रा उठा, क्योंकि महात्मा है, क्योंकि राम की शक्ति जानता है। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कं समय भवन वक्त्रं परित्रस्तो बभूव च। अब मारीच कुछ बोल नहीं सकता, रावण से कुछ बोल नहीं पाता है, भय के कारण रावण को अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे ओठों को चाटने लगा मारीच। ओठ सूख गए, तो रावण की तरफ देख रहा है, अपने ओठों को चाट रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। इतना दुख हुआ कि मुर्दा जैसा मारीच हो गया। अब तो मैं मरा, अगर राम के पास जाऊं, राम के सामने जाऊं, तो बस मेरी मौत है। उसी अवस्था में उसने रावण को देखा। ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ नेत्रय रणमिषै रेवे मृत भूत एवार्तस्तु रावणम समुदेक्षत। उस महान वन में मरीच को श्री रामचंद्र के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया और हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोला। उसकी वह बात रावण के लिए भी हितकारी थी। सरावणम त्रस्त विषण चेताम महावने राम पराक्रमज्ञ कृतांजलि तत्त्वम वाच वाक्यम हितम च तस्मै हित महात्मनश्च। ये बड़ी सुंदर घटना है, जहाँ जो है मारीच रावण को उपदेश देता है। क्योंकि हम जो जीव है इस भौतिक संसार में जो कष्ट भोग रहे हैं, वो क्यों? राम की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से। और राम जो है एक पुरुष हैं और उनकी भी अपनी इच्छा है, और हमें जानना चाहिए उनकी क्या इच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा से जो चाहें वो कार्य करें और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो भक्ति है वो भय से ही शुरू होती है। जो पापी हैं वो जो है भगवान की भक्ति जब करते हैं तो भय से ही वो शुरू होती है। भय उनको होने चाहिए कि अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो राम बहुत खतरनाक है, भगवान बहुत खतरनाक हैं। तो राक्षस राज रावण की बात सुन करके मारीच ने उसको उत्तर दिया। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यम वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजान् मारीचो राक्षसेश्वरम्। मारीच को पहले महात्मा कहा और अभी कहा महातेज। ये मारीच का तेज है कि वो राम के पराक्रम को जानते हैं। तो मारीच ने क्या कहा, देखो बड़ी सबसे जो है प्रारंभिक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या? सबसे पहले रावण को बताता है, राजन सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं। परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो ऐसी बात कहने और सुनने वाले दोनों ही बहुत दुर्लभ है। कितना अच्छा बताया है, रावण को बुरा ना लगे है ना, तो वो बात तो जो है ना रावण को बुरी लगने वाली है, इसलिए पहले से बता दिया क्या कि प्रिय बात बोलने वाले तो हमेशा मिलते हैं, लेकिन अप्रिय बात बोलने वाले और सुनने वाले बहुत कम होते हैं। तो रावण मारीच का जो है ये इशारा है रावण से कि आप जो है हालांकि बुरी लगेगी आपको मेरी बात, लेकिन आप सुन लो क्योंकि हितकारी है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिनः अप्रिय च पथ्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। आप रावण को क्या बता रहे हैं, रावण को बुरी लगेगी बात, लेकिन मारीच बता रहे हैं तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं, तुम अपना कोई जासूस नहीं रखते हो, मतलब कि जिससे पता चले कि कौन शत्रु तुम्हारे विरुद्ध है काम कर रहा है, कौन शत्रु ज्यादा प्रबल हो रहा है, तुम्हें किस शत्रु से खतरा है, ये सब कैसे पता चलता है, जासूस के द्वारा। तो मारीच ने कहा कि तुम कोई जासूस तो नहीं रखते, अतः निश्चय ही तुम रामचंद्र को बिल्कुल नहीं जानते। रामचंद्र जो है ना तुम्हारे लिए कितने खतरनाक हैं तुम जानते नहीं बिल्कुल, क्योंकि तुमने जासूस नहीं रखे हैं। जासूसों के द्वारा अगर पता लगाते तो पता चलता कि रामचंद्र तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उनके पराक्रम के जो गुण हैं बहुत पढ़े चढ़े हैं, बढ़े चढ़े हैं, और रामचंद्र इंद्र और वरुण के समान शक्तिशाली हैं। ननूनम बुद्धि से रामम महावीर गुणोन्नतम अयुक्तचार चपलम महेंद्र वरुणोपम। तात मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो, तो क्या करना चाहिए, राम से डर कर रहो, राम बहुत खतरनाक है, सब राक्षसों का कल्याण चाहते हो तो राम के विरुद्ध मतलब कोई चेष्टा मत करो, अच्छा ही है इसी में, कहीं ऐसा ना हो कि राम अत्यंत कुपित होकर समस्त संसार को राक्षसों से शून्य कर दें, अगर वो कुपित हो जाए तो एक राक्षस नहीं बचेगा पूरी दुनिया में, है ये थोड़ा सा विचार कर लो कि बहुत खतरनाक है। अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषाम् अपि रक्षसाम् अपि रामो न संक्रोधाम् कुरियान् लोकान् न राक्षसाम्। अब सीता जो है ना इसको तुम पाना चाहते हो, लगता है कि सीता जो है ना तुम्हारे जीवन का अंत कर देने के लिए ही उत्पन्न हुई है, तुम सीता को पाना चाहते हो ना, पर सीता क्या है, सीता पैदा हुई है किस लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीता ने जन्म लिया है तुम्हारा विनाश करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, सीता बहुत खतरनाक है। अपि तेजी मितांतायं नोत्पन्ना जनकात्मजं अपि सीता निमित्तं च न भवेत् यत्नं महं। तुम जैसे स्वेच्छाचारी राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे साथ और राक्षसों के साथ कहीं नष्ट ना हो जाए, तुम्हारे जैसे राजा के कारण अपनी मर्जी से जो चाहो वैसा करना चाहते हो, तुम किसी से पूछते नहीं हो, मंत्रणा नहीं ले रहे और कुछ सभा भी नहीं बुला रहे कि सभा में कुछ प्रस्ताव मतलब रखो और फिर सब मंत्रियों की अनुमति लो, तुम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, तुम क्या हो, स्वेच्छाचारी हो, और इस कारण से क्या होगा कि लंकापुरी तुमको खो देगी और सब राक्षसों को भी खो देगी, ना तुम रहोगे लंका में ना राक्षस रहेंगे, यमलोक में जाओगे तुम। अपि त्वाम् ईश्वरम् प्राप्य काममृतम् निरंकुशम् न विनश्येत् पुरी लंका त्वया सहम् सराक्षसम्। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी हो स्वेच्छाचारी हो और पाप के विचार करता हो, वो अपना विनाश करता है, अपने स्वजनों का विनाश करता है और अपने पूरे देश का विनाश करता है। तन्विधा काम वृत्तो ही दुशीला पाप मंत्रित आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं सराजा हन्ति दुर्मति। रामचंद्र जी ना तो पिता द्वारा त्यागे गए हैं, रावण ने कहा था कि हमें सीता का हरण क्यों करना चाहिए, क्योंकि राम को पिता ने निकाल दिया है, तो राम अच्छे नहीं है। राम जो है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कि ये ठीक है सीता का हरण कर ले हम, क्यों, क्योंकि राम अच्छे नहीं है, राम को पिता ने त्याग दिया है। तो वो कह रहे हैं कि उनके पिता ने त्यागा नहीं है राम को, ना उन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। रावण कहता है कि राम ने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, पिता ने उनको त्याग दिया। ऐसे होता है ना, कोई राजा अपने पुत्र को त्याग देता है अगर वो अधर्म का आचरण करता है। तो रावण जो है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उल्टा सीधा सब बोलता है। तो राम को कहता है कि राम ने अधर्म का आचरण किया तो पिता ने उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। तो मारिच कहता है राम को ना तो पिता ने त्यागा है ना निकाला है, और ना राम ने किसी धर्म की मर्यादा का त्याग किया है। राम ना तो लोभी हैं और ना दूषित आचार वाले हैं और ना ही क्षत्रिय कुल के कलंक हैं। रावण ने सब बातें कही थी कि राम क्षत्रिय कुल के कलंक हैं। अपने को सही करने के लिए सबको गलत बताते हैं। न चा पित्रा परित्यक्तुं ना मर्यादा कथंचन न लुब्धो ना च दुशीलो न चा क्षत्रिय पांसन। राम क्या है फिर, राम क्या है, राम कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले है? राम है, धर्म के गुणों से कभी हीन नहीं है, उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है, कोमल स्वभाव है राम का, सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। न च धर्म गुणैर्हीनां कौसल्यानन्द वर्धनां न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतैस्तैरतः। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया, ये देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन ये निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं वन को चले हैं, है? राम को पिता ने नहीं निकाला है, राम ने पिता की सत्य की रक्षा करने के लिए स्वयं ही वन में आए, नहीं तो राम को वन में जाने की हिम्मत किसकी थी, राम को वन में जाने के लिए कहने की हिम्मत किसमें थी, उनके पिता क्या बोल एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे राम को कि वो वन में जाए। यहाँ तक कि राम के वन के जाने का संवाद सुनकर के ही उनके पिता ने प्राण त्याग दिए, वो देख नहीं सकते हैं कि राम वन को जाएं, वो सुन नहीं सकते हैं, वो बोल कैसे सकते थे। तो रावण से कहता है मारीच कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो कि पिता ने राम को वन से निकाल दिया। स्वयं ही वंचितम पितरम दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनम करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रव्रजितो। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज और भोग को त्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। कैकेय्या प्रिय कामार्थम पितुर दशरथस्य च हित्वा राज्यम च भोगांशाम प्रविष्टो दंडकावनम। तात श्री राम क्रूर नहीं है, रावण ने कहा था कि राम क्रूर स्वभाव वाले हैं। तो मारिच बताता है कि राम क्रूर नहीं है, वे मूर्ख भी नहीं है, रावण ने कहा था कि राम मूर्ख भी हैं। तो सब बता रहे हैं कि राम क्रूर नहीं है, राम मूर्ख नहीं है और अजितेंद्रिय भी नहीं है। रावण ने कहा था कि अपनी इंद्रियों को उन्होंने बस में नहीं किया राम ने। तो भाई मारिच बताता है कि राम ने अपनी इंद्रियों को बस में किया है। श्री राम मैं मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना है, रावण ने राम को भी कहा था, रावण ने भी कहा था कि राम झूठ बोलने वाले हैं। तो महादेव कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि राम ने कभी भी झूठ बोला हो। अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। मारी सहन नहीं करता कि राम की इस प्रकार निंदा करे। राम कर्क सस्तातम ना विद्वान ना जितेन्द्रियम अंडतम ना सुतम चैव नैव तुम वक्तुम अर्हति। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं, वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र सब देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम संपूर्ण जगत के राजा हैं। रामो विग्रहवान धर्मां साधु सत्य पराक्रमां राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां निवासवः। और उनकी पत्नी सीता वो क्या है? विदेह राजकुमारी अपने पातिव्रत के तेज से सुरक्षित हैं। सीता जी तुम उनके पवित्रता को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो। सीता जी जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार सीता को राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम कैसे बलपूर्वक सीता का अपहरण करना चाहते हो? कथम नु तस्य वैदेही रक्षिताम स्वयं तेजसाम इच्छसे प्रसभम हरतुम प्रभा में वैवस्वतः। और श्री राम क्या है? पहले समझ लो तुम जो काम करना चाहते हो वो कितना खतरनाक है। श्री राम क्या है? प्रज्वलित अग्नि के समान बहुत भयानक होती है। जो प्रज्वलित अग्नि हो तो देख करके ही बहुत डर लगता है अग्नि। राम प्रज्वलित अग्नि के समान है और बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है। उनके बाण धनुष और खड्ग ही उसका ईंधन का काम करते हैं उस अग्नि का। और तुम्हें सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्या होगा? पतंगा जैसे आग में गिरे खत्म, तो तुम्हारा जो ना सर्वनाश हो जाएगा अगर तुम राम के पास गए। सराचिर से मना दृश्यम चाप खड्गे धनम रणे राम अग्निम सहसा दीप्तम न प्रवेश तुम तुम रहसी। हेतात धनुष ही जिसका फैला हुआ मुख है और बाण ही प्रभा है, तो ऐसे धनुष और बाण धारण किए खड़े हैं राम और जो है शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ हैं, उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ सहसा जाना नहीं चाहिए। जैसे कोई जो है ना सीधे मौत के मुंह में घुस जाए, ऐसे तुम जो है ना राम के पास जा रहे हो। अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर के तुम जो है ना राम रूपी यमराज के पास जाना चाहते हो। यमराज धनुर्व्याते दीप्ताश्यम सरार्चितम अमर्षणम चाप बाण धरम तीक्ष्णम शत्रु सेना प्रहारिणम राज्यम सुखम जसम त्यंजम जीवितम चेष्टिमात्मनम नात्यासादयितुम तातम रामांतकम निहारहसि। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है उनका तेज अप्रमेय है, श्री राम का धनुष उनका आश्रय है, अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है ये वन में सीता का अपहरण कर पाओ। अप्रमेयम हि तत्तेजो यसिता जनकात्मजः न तुम समर्थस्ताम हर्तुम राम चापाश्रयम बने। रामचंद्र मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी है, उनका वक्षस्थल सिंह के समान है। भामिनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी है, इच्छता अपने पति का ही अनुसरण करती है। तस्व नर सिंह सिंह रस्य भामिनी प्राणेभ्योपी प्रियतरा भार्या नित्यम मनुम्रता। तुम्हारी का क्या कहना है कि सीता जब राम की जो है ना प्राणों से अधिक अगर प्यारी हैं तो कैसे तुम सीता का हरण कर सकते हो? और राम में शक्ति जो है ना असीमित है। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी राम की प्यारी पत्नी है और वे अग्नि की ज्वाला के समान असह्य हैं, अतः उन सुंदरी सीता पर बलात्कार नहीं किया जा सकता है। साधर से तुम सक्याम मैथिल्यो ओजस्वी प्रिया दीपस्य विहुदा शिखा सीता सुमध्यमान।
अब
मरीच रावण को उस समय की बात बता रहा है जब राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में उसको भयभीत किया था। विश्वामित्र मुनि श्री राम को अपने साथ उस स्थान पर ले गए जहां मरीच उनके यज्ञ में विघ्न डालता था। उस समय मरीच अपनी बात बता रहा है कि मैं राम के पराक्रम को नहीं जानता था। उसने कहा, मेरा शरीर मेघ के समान काला था, मस्तक पर किरीट था, मैं अपने पराक्रम के अभिमान से भरा हुआ था, मुझमें 1000 हाथियों का बल था, मैं ऋषियों का मांस खाता और समस्त जगत में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचरण करता रहता था। नील जी मोत संकासन तत्कांचन कुंडल भयम लोकस्य जनयन किरीटी परिघायुध विचरण दंडकारण्यम ऋषिमांसानि भक्षयन। ये सब बातें मरीच रावण को राम के पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए ही बता रहा है।
सोच समझ के काम करो, तुमको आगे का और पीछे का सोचते नहीं है। तुमने भी सुना नहीं है राम कितने खतरनाक हैं, है ना? मैंने जो देखा, मैंने अनुभव किया है, मेरा अनुभव ले लो हा? तो तुमको बहुत फायदा होगा। इसलिए मरीच अपना अनुभव बता रहा है। अब वो विश्वामित्री जी राम को ले आए अपने आश्रम पर। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की। किसने यज्ञ की दीक्षा ली? किसने? विश्वामित्र जी ने। और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए रक्षा के लिए पास खड़े हो गए। अब राम खड़े हो गए विश्वामित्र की रक्षा करने के लिए। तम तथा दंडकारण्य यज्ञमुद्दिश्य दीक्षितम् अभूवोपस्थितो राम चित्रम विस्तारयन् धनु। उस समय श्री राम में जवानी की चिन्ह भी प्रकट नहीं हुए थे। अभी तो राम जवान है, उस समय तो राम बालक थे जब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। और उस समय का पराक्रम ऐसा है तो अब सोच लो तुम। जवानी के रक्षण नहीं प्रकट हुए थे, वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे और उनके शरीर का अंग सांवला, आंखें बहुत सुंदर थी। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथ में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। अजात व्यंजना श्रीमान बालाच्या महासुभेक्षण एक वस्त्र धरो धनवी सखी कणक मालयान। उस समय अपने उद्दीप तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र बालचंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। शोभयन् दंडकारण्यम् दीप्तेन स्वयं तेजसा अदृश्यते तदा रामो बालचंद्र एवोदितान। इधर मैं भी बहुत घमंड में भरा हुआ था तो राम को देख करके मुझे कोई डर नहीं हुआ तो मरीच बता रहा है कि मैंने जो गलती की उसको अब जीवन भर याद रख रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। क्या गलती की थी? कि राम से डरा नहीं मैं। राम से डरा नहीं क्यों? तो मेघ के समान काला शरीर मेरा था तो मैं सोचा कि मुझे क्या डरना है राम से। बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर में घुसा। मेरे कानों में तपे हुए सोने के कुंडल थे, मैं बलवान था, मुझे वरदान मिल गया था कि देवता मुझे नहीं मार पाएंगे। इसलिए तो राम से इसलिए खतरा पैदा हुआ क्योंकि राम क्या है? मनुष्य है। मरीच ने वरदान प्राप्त किया क्या कि देवता नहीं मार पाएंगे, तो राम से उसको बहुत खतरा हो गया क्योंकि राम क्या है? मनुष्य है। राम मनुष्य की लीला कर रहे हैं इसलिए राम से बहुत खतरा हो गया। लेकिन मैं सोचता कि देवता नहीं मार सकते तो मनुष्य क्या मार पाएंगे, लेकिन नहीं, राम से बहुत खतरा है। ततो हम मेघ संकासन सत्य कांचन कुंडल बलि दत्त वरो दर्पात आज काम आश्रमांतरण। भीतर प्रवेश करते ही मैं जैसे घुसा और राम की दृष्टि मुझ पर पड़ी और संकट है, बहुत बड़े संकट आ गया मेरे ऊपर। क्या संकट था कि राम ने देख लिया मुझे
बहुत बड़ा संकट आ गया, मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया, वो देख नहीं करी उन्होंने, जैसे बिल्कुल पहले से तैयारी थी, जैसे देखा और धनुष उन्होंने तुरंत उठाया और धनुष उठाया और बिना किसी घबराहट के डोरी चढ़ाई उन्होंने धनुष पर, मतलब मेरे लिए अब खतरा पैदा हुआ। केन दृष्टा प्रविष्टो हम कैसे वो जितायुधाम माम तो दृष्टवा धनु सज्जम असभ्रांतस्य कार्यः। और मैं भूल कर रहा था, मेरी बहुत बड़ी गलती क्या थी कि मैं डरा नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं डरा नहीं, ये बालक है ऐसा समझकर तिरस्कार किया और बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की यज्ञ वेदी की तरफ दौड़ा, यज्ञ वेदी को दूषित करने के लिए दौड़ा। अभिजानन हम मुहा बालोयम इति राघवम विश्वामित्र सिताम वेदिम अभ्यधावम कृतत्वरः। इतने में ही श्री राम ने ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, वो छोड़ दिया उन्होंने बाण, जैसे वो मैं नहीं रोका और राम नहीं रोके, जितनी तेजी से मैं बढ़ा उतनी तेजी से उन्होंने बाण छोड़ा राम ने, उस बाण की चोट खाकर मैं 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिरा 100 योजन 800 मील दूर 1200 किलोमीटर दूर इधर गिरा, देखा एक क्षण में कहां से कहां आ गया तो मतलब ये पराक्रम जो है कभी भूल नहीं सकता कि मैं कहां था और कहां आ गया कहां से कहा उन्होंने इतनी कसके। तेने मुक्त ततो बाणः सिता शत्रु निबरहणः तेनाहं ताडिता चित्ता समुद्रे सतयोजने। राम की वीरता देखो और उनकी दया भी देखो कि दया भी कितनी है कि मारा नहीं उन्होंने, अगर मारना चाहे तो मार डालते मुझे, लेकिन अगर वो मारना नहीं चाहते थे मुझे इसलिए मेरी जान बची है, ये मत सोचो कि मैं अपने पराक्रम से बच गया कि राम मुझे मार नहीं पाए, तो ये नहीं सोचना कि राम मुझे मार नहीं पाए हैं और जो है ना मेरा मेरे अंदर कुछ पराक्रम था, उन्होंने मारना नहीं चाहा था इसलिए मेरी जान बच गई, उनके बाण के वेग से मैं भ्रांतचित होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिर गया। तब दीर्घ काल के बाद जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया, बहुत समय के बाद होता है जब तब मैं लंकापुरी आया ने माम हम तुम तदा वीरे निरक्षित रामस्य सर्वे गेन निरस्तो भ्रांत चेतन पादितो हम तदा तेन गंभीरे सागराम वसी प्राप्त संज्ञा चिरात लंकाम प्रतीगत पुरी। इस प्रकार उस समय में मरने से बच गया, जीवन भर अब राम को याद करता हूँ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे, उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था उस समय जब ऐसा काम किया उन्होंने, बाद में विश्वामित्र जी ने उनको और अभ्यास कराया अस्त्र चलाने का, जब अस्त्र चलाने का अभ्यास भी नहीं था तब ये काम किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने मेरे उन सब सहायकों को मार डाला जो मेरे साथ गए थे, मुझे छोड़ दिया बाकी किसी को नहीं छोड़ा, मेरे साथ में जो थे सब खत्म कर दिया नाम एवं अस्मि तदा मुक्त सहाया से निपातिता अक्रदास्त्रेण रामेण बालेना क्लिष्ट कर्मण। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे। मारीच कहता है और अंतिम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे, बचोगे नहीं तुम, तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। तन्मय आवार्यमाणस् यदि रामेण विग्रह करिष्यस्यापदं घोराम क्षिप्रम प्राप्य न शिष्यसि। देखो अपना दिल बहलाओ, खेल कूद में दिल बहलाओ
ये सीता का जो ना चक्कर छोड़ दो, अपना दिल बहलाओ किसमें, खेलने कूदने में है? और भोग विलास में भी, सामाजिक उत्सवों में है? दिल बहलाओ। और राक्षस भी जो ना अपना लगे रहे इसी में है ना, राम की चिंता छोड़ दो, राम का विचार मत करो कुछ, मतलब उनके विरुद्ध आचरण करने का विचार मत करो, मौत को जो है ना मत बुलाओ। क्रीड़ारति विविधि ज्ञानां समाजोत्सव दर्शिनां रक्षतां तैव संतापम अनर्थं च हरिष्यसि। और क्या कह रहा है मरीज, क्या कह रहा है कि मिथिलेश कुमारी सीता के लिए क्या, मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा क्या, पूरी लंकापुरी का विनाश। अगर तुम सीता को चाहते हो तो क्या देखना पड़ेगा, पूरी लंकापुरी का विनाश, जिसमें धनियों की अट्टालिकाएं हैं, राजभवन हैं, बहुत से रत्न से सजी हुई लंकापुरी है, पूरी लंकापुरी नष्ट हो जाएगी अगर तुम सीता को चाहते हो, सीता को पाना चाहते हो तो। हर में प्रासाद संबाधाम नाना रत्न विभूषिताम रक्षसि तुम पुरीम लंकाम विनष्टाम मैथिली कृते। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं, पाप या अपराध नहीं करते हैं, ये भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पाप से ही नष्ट हो जाते हैं। अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पाप संत्रियाः पर पापैर् विनश्यन्ति मत्स्यानागः हृदयतः। वो कुछ नहीं सोच रहे हैं सीता के बारे में, बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। तुम देखोगे कि वे राक्षस जो है तुम्हारे अपराध से मरे हुए पृथ्वी पर पड़े हैं, तुम्हारे अपराध से, उनका कोई अपराध नहीं, लेकिन वो मारे जाएंगे। जिनके अंग चंदन से चर्चित हैं, दिव्य आभूषण से विभूषित रहते हैं, बेचारे निर्दोष हैं, वे राक्षस अपना दूसरे कामों में सुख भोग कर रहे हैं, लेकिन तुम सीता के चक्कर में तुम जो है उनको मरवाओगे, जबकि वो कुछ जो है वो कुछ नहीं विरोध कर रहे हैं। दिव्य चंदन दिग्धांगान दिव्याभरण भूषितान रक्षसि हतान भूमौ तव दोषात् रक्षसान। तुम्हें ये भी दिखाई देगा कि कितने ही राक्षसों की स्त्रियां हर ली गई हैं, कुल की स्त्रियां साथ हैं, और वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में दसों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं, कुछ किस्तियां साथ हैं। हृतदाराम ददाराम चाम दस विद्रमितो दिशाम हृत शेषान शरणान द्रक्षदे तम निशाचरम। निस्संदेह तुम और क्या देखोगे कि लंकापुरी में बाणों का जाल बिछ गया है, और क्या देखोगे कि लंकापुरी में आग की ज्वालाएं है? लंकापुरी आग की ज्वालाओं से घिर गई है, और एक एक घर जल करके भस्म हो गया है। तुम सीता को पाना चाहते हो, क्या देखोगे कि लंकापुरी का एक एक घर क्या हो गया है, राख राख बन गया है। सर जा रहे परिक्षिप्तां अग्नि ज्वाला समावृतां प्रदग्ध भवनां लंकां द्रक्षसि तुम संतयम्। राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं, उन अपनी स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ, और अपनी मान प्रतिष्ठा उन्नति राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट ना होने दो। कितना अच्छा हम बता रहे हैं। परदारा भी मरसा तुम नान्या पाप तरम महान प्रमदानाम सहस्त्राणी तब राजन परिग्रहे भवसुदार निरता सकुलम रक्षना किसान मानम वृद्धिम च राज्यम च जीवितम चेष्टमात्मनः। यदि तुम अपनी सुंदर स्त्रियों को बहुत काल तक भोगना चाहते हो तो राम का अपराध ना करो। मित्रों का सुख भी अगर बहुत
काल तक भोगना चाहते हो तो राम का अपराध न करो। कलत्राणी च सौम्यानी मित्रवर्गम तथैवचम यदि इच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृता रामेति प्रियम्।
कितनी विस्तार से बातें बताई मरीज ने, किस लिए? कि राम से डर करके रहो, राम से विरोध ना करो। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मरीज कह रहा है क्या कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम सीता का हरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी। तुम श्री राम के बाण से अपने प्राण गंवा करके बंधु बांधवों के साथ कहाँ की यात्रा करोगे? यमलोक की, यमलोक की यात्रा करोगे। निवारे माणा सुरदा मया भृशम प्रसंग सीताम यदि धरती क्षीण बला स बांधव यमक्षयम राम सरा सजीता। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह राम के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद और जो घटना हुई उसको तुम सुन लो। इस बार तो मैं राम के हाथ से जिंदा बच गया था, अब और क्या घटना हुई उसको और तुम सुनो। एवं अस्मि तदा मुक्ता कथंचिन तेन संयुगे इदानीमपि यन्वृत्तम तत्क्षणो स्वयं उत्तरम। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। फिर से मैं विरोध किया राम का। एक दिन मृग रूपधारी दो राक्षसों के साथ मैं भी मृग का रूप धारण करके दंडक वन में गया। तो अब मृग का रूप धारण करके मैं गया दंडक वन में, और दो राक्षस और भी थे मेरे साथ में। क्या बने थे? मृग बने थे, हरण बने थे। राक्षसाभ्याम अहम द्वाभ्याम अनिर्विन्न तथा कृता सही तो मृग रूपाभ्याम प्रविष्टो दंडक बने। मैं महान बलवान था और मेरे जीव आग के समान थी, दाढ़ें बहुत बड़ी थी, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंड कारण में बिचरने लगा। देते जे वो महानंत्रन तीक्षण श्रृंगो महाबल विचरण दंड कारण्यम मांस भक्षो महामृग। रावण मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में जलाशयों के घाटों पर और देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वियों को तिरस्कृत करता हुआ सब और विचरण करने लगा। अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्य वृक्षेषु रावण अत्यंत घोर विचरण तापसान ताम्रधर्षयन्। दंडकारण्य के भीतर धर्म में लगे हुए तपस्वियों को मारकर उनका खून पीना और मांस खाना यही मेरा काम था। निहत्य दंडकारण्य तापसान धर्मचारिणाम रुधिराणि तुमंतेषां तन्मांसानि च भक्षयन्। मेरा स्वभाव तो क्रूर था, मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में बिचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ खून पी करके मतवाला होकर दंडक वन में घूमने लगा। ऋषि मांसासन क्रूर त्रासयन वन गोचरान तदा रुधिर मत्तो हम विचरम दंडकावनम। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम और सीता और लक्ष्मण जी के पास पहुंचा और ज्यादा खतरे में पड़ गया मैं। अभी दोबारा फिर पहुंचा मैं तदा हम दंड कारण्य विचरण धर्म दूस कहां आसादयम तदा रामम तापसम धर्म माश्रितम वैदेहीं च महाभागाम लक्ष्मणम च महारथम तापसमेताहारम सर्वभूते हिते रतम। वन में आए हुए महाबली श्री राम को क्या जाना कि ये तो तपस्वी हैं, तो तपस्वियों का मैं क्या करता हूँ? मांस खाता हूँ, खून पीता हूँ, ये तो तपस्वी हैं। ऐसा जानकर मैं आगे बढ़ा और पहले के बैर का स्मरण करके बहुत गुस्से में उनकी ओर दौड़ा। बहुत खतरनाक उस समय मेरी आकृति मृग की थी और मेरे सिंह बड़े तीखे थे तो उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। राम को मारने के लिए आया मैं। मेरी बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल जैसा गया कि कितना प्रभाव था पहले भूल ही गया।
सोहम वनगतम रामम परभूय महाबलम तापसोयम इति ज्ञात्वा पूर्व वैरम मनुस्मरन अभ्यधावम संक्रुंधन तीक्ष्ण श्रृंगो मृगाकृति जिघांसूर कृत पंगं तम प्रहारम मनुस्मरन।
हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर तीन पैने बाण छोड़ दिए। तुरंत है तीन थे, तीन हरण थे, है ना, और राम समझ गए कि ये हरण नहीं है, क्या है, राक्षस है। तो तीन बाण एक साथ छोड़ दिए राम ने उसी समय तुरंत। अब देखो क्या हुआ, वो बाण गरुड़ के समान, वायु के समान जो ना चले राम के छोड़े हुए, अब वो निकल पड़े बाण, तो बहुत खतरनाक। तेन त्यक्ता त्रयो बाणा चिता शत्रु निबर्हणाम विकृष्ट महाचापम सुपर्णानिल तुल्यगाम। झुकी हुई गांठ वाले वे तीनों बाण वज्र के समान अत्यंत भयंकर और खून पीने वाले थे, एक साथ ही तीनों बाण हमारे पास आ गए। हम खून पीना चाहते थे तपस्वियों का, वे बाण हमारा खून पीने के लिए आ गए। एक साथ आ गए तीनों बाण। ते बाणा वज्र संकासा सुघोरा रक्त भोजना आजगमु सहिता सर्वे प्रयासन्न परमणः। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले उनके भय का सामना कर चुका था, इसे जैसे देखा और क्या किया, कुशल करके भागा तुरंत। भाग जाने से मैं बच गया, किंतु वे मेरे दोनों साथी राक्षस मारे गए, क्योंकि उनको पहले से पता नहीं था राम की शक्ति का पता नहीं था, तो वो तुरंत ही प्राणों से हाथ धो बैठे, गए काम से। पराक्रमज्ञो रामस्य सठो दुष्ट सठो दृष्ट भया पुना समुत्क्रांत ततो मुक्तं ताप भौराक्षतो हृतम। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला, तब से मैं क्या हो गया, सन्यासी। तब से सब भोगों से मेरी विरक्ति हो गई, मैं सन्यासी बन गया हूँ, हरी सन्यासी है। जीवन भर के लिए ज्ञान प्राप्त हो गया। तब से सन्यास लेकर सब पापों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया हूँ, अब कोई पाप नहीं करता हूँ, मेरे सब पाप कर्म बंद हो गए। तरेण मुक्तो रामस्य कथंचिन प्राप्य जीवितम यह प्रमराजित हो युक्त तापतो हम समाहितः। अब मुझे एक एक वृक्ष में क्या दिखाई पड़ते हैं, राम दिखाई पड़ते हैं। भय के मारे ऐसा अनुभव हुआ है राम के पराक्रम का कि कोई भी वृक्ष देखता हूँ तो क्या दिखाई पड़ते हैं, राम, जो कि चीर वस्त्र धारण किए, काला मृगचर्म धारण किए और धनुष धारण किए हुए हैं, राम दिखाई पड़ते हैं, है? और यमराज के समान जैसे मुझे मारने के लिए खड़े हैं। मैं हमेशा भयभीत रहता हूँ। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामी चीर कृष्णा जिनाम्बरम गृहीत धनुषम रामम पात हस्तम निवांतकम। रावण मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। जहाँ जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ देखता हूँ राम, हजारों राम दिखाई पड़ते हैं मुझे। हर समय ये सारा बन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है, हर जगह राम दिखाई पड़ते हैं मुझे। कितना सौभाग्य है, भाई के कारण भी राम का चिंतन कर रहा है। अपि राम है सहस्राणी भीता पश्यामि रावण राम भूत मिदम सर्वम अरण्यम प्रतिभाति में। राक्षसराज जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। बिना किसी प्रयास के ही समाधि लग गई उनकी, बिना प्रयास के ही, भय के कारण जो है राम का जो है चिंतन एक क्षण के लिए भी नहीं छूटता है, सोते जागते कभी भी राम को भूलते नहीं है, भय के कारण भी। सपने में भी श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत हो जाता हूँ और मूर्छित हो जाता हूँ। राम में भी पश्यामी रहिते राक्षसेश्वर दृष्ट्वा स्वप्रकृतम रामम उन्भ्रमामि विचेतनम। रावण
मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न रथ जैसे जितने नाम हैं कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। क्यों? रत्न का नाम सुनता हूँ या रथ का नाम सुनता हूँ तो मेरे मन में भय पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि राह है। राम के नाम से तो भय है ही है, राह जिस चीज में राह हो उससे भी मुझे बहुत भय पैदा होता है अगर सुन लेता हूँ। सकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि तारथाश्चैव मित्रासं जनयन्ति मे। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रकुल नंदन श्री राम बलि का भी वध कर सकते हैं और नमुची का भी वध कर सकते हैं। अहम तस्य प्रभावंगु युद्धम तेन ते शमम बलिम्बा नमचिम्बापी हन्याधि रघुनंदन। रावण तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा दूर चले जाओ, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा ना करो। अगर मुझे जिंदा रहना देखना चाहते हो तो राम की चर्चा मत करो। राम की चर्चा तो छोड़ो, रथ की चर्चा, रत्नों की चर्चा भी अगर करते हो तो मैं जो ना घबरा जाता हूँ। राम की चर्चा तो बहुत दूर है। रणे रामेण युद्धस्व क्षमा मां कुरु रावण ते रामे कथा कार्या इति मां द्रष्टुमिच्छति। लोक में बहुत से साधु पुरुष केवल धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे, दूसरों के अपराध से ही वे उनके साथ नष्ट हो गए। भावा साधवो लोके युक्ता धर्मम अनुष्ठिता परेशान अपराधे न विनस्ता सा परिच्छदा। तुम्हारी क्या कह रहा है कि तुम्हारे अपराध के कारण मैं मर जाऊंगा। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ राम का, मैं तो राम का कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम अगर अपराध करोगे तो मैं बेमौत का मारा जाऊंगा, जबकि मैं डरता हूँ, मैं नहीं चाहता राम का अपराध करना। निशाचर मैं भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वो करो, मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। कौन से कार्य में? मतलब राम के विरुद्ध जो तुम काम कर रहे हो इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता मैं। सोहम परापराधीन विनशेयम निशाचर पुरुयत्ते क्षमम तत्त्वम अहम त्वाम नानुयामि वयम। क्योंकि रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी हैं, महान आत्मबल से संपन्न हैं और अधिक बलशाली हैं, वे समस्त राक्षसों का संहार कर सकते हैं। रामस्य ही महातेजा महातत्व महाबलः अपि राक्षस लोकस्य भवेदंत करोपि। यदि सूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और राम के हाथ से मारा गया तो बताओ इसमें राम का क्या अपराध है? देखो राम का क्या अपराध है? महाराज कह रहा है कि राम का अपराध तुम क्यों मान रहे हो, राम ने क्या अपराध किया है? रावण का कहना है कि राम ने 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, तो राम का अपराध क्या है? क्योंकि वे खुद ही आए मरने के लिए। राम ने तो उनको कुछ कहा नहीं था, राम ने तो कोई बातचीत नहीं की थी, वो खुद ही मरने के लिए आ गए राम से, तो राम का क्या अपराध है? यदि सूर्पणखार हेतु जनस्थाने गता करा अतिवृत्तो हता पूर्वम रामेणा क्लिष्ट कर्मणाम अत्र ब्रोहि यथा तत्त्वम को रामस्य व्यतिक्रमाम। तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूँ, यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। इदम बचो बंधु हितार्थिनामया यथोचिमानम यदि नामिपत्यसे बांधवस्य क्षति जीवितम रणेन हृतो रामेण सरेर जीम गये। तो बड़ी सुंदर जो ना ये चर्चा है, मारीच ने जो बातें बताई हैं
बहुत मार्मिक हैं, बड़ी प्रभावशाली वाले हैं, है ना। तो ये जो है ना जरूर चिंतन करना चाहिए किस प्रकार से। तो ये जो राम कथा है ये व्यक्ति को जो है अधर्म के मार्ग से हटाती है। देखो रावण जो है जो कार्य करना चाहता है, कितना कितना विरोध हुआ है इस कार्य का, कितनी कितनी निंदा हुई है और कई प्रकार से निंदा हुई है इस कार्य की कि जो रावण कर रहा है। तो मारी जो है ना मतलब विशेष रूप से ये इस बात पर निंदा नहीं कर रहा है कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, बल्कि इस दृष्टि से निंदा कर रहा है कि इससे जो ना परिणाम क्या होगा, तुरंत ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। मारी जिस प्रकार से निंदा कर रहा है ना, तो बहुत सुंदर ये वर्णन है, है? जो कि राम से भयभीत होकर के हमारे इसने रावण से कहा है।
लेकिन जब रावण मारीच की बात नहीं मानता है और फिर से वो आज्ञा देता है राम के विरुद्ध आचरण करने के लिए, तो फिर मारीच क्या बोलता है, निशाचर किस पापी ने तुम्हें पुत्र राज और मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का ये सुझाव दिया है, केनायमोपदिष्टस्ते विनाशा पाप कर्मण सपुत्र राज्यस्य सामाक्यस्य निशाचर। हे राजन, कौन ऐसा पापी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है, यानी तुम्हारे सुख को नष्ट करना चाहता है, किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की ये सलाह दी है, कस्त्वया सुखिना राजन नाभिनन्दति पापकृत् केनेदम् उपदिष्टम् ते मृत्यु द्वारम् उपायतः। निशाचर, आज ये बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ाकर नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं। सत्रवस्तव सुव्यक्तम हीन वीर या निशाचर इच्छन्ति त्वाम विनश्यन्तम् अपरोद्धम बलीयस। राक्षस राज, तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें ये पाप करने का उपदेश दिया है, जान पड़ता है कि वो तुम्हें नष्ट होते हुए देखना चाहता है। कि नेदमोपदिष्टम ते क्षुद्रेणा हित बुद्धिनाति नश्यंतम सुकृते निशाचर। रावण, निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं जो तुमको इस रास्ते से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं कर रहे हो। मतलब जो मंत्री तुम्हें इस प्रकार की सलाह देते हैं, तुम उन मंत्रियों का वध करो, तुम क्यों ये कार्य कर रहे हो। वध्या खलो न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण ये त्वाम मत्पथ मारूढ़ न गृहणन्ती सर्वशः। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चल दे उसे वे रोकें। तुम भी रोकने के योग्य हो, फिर भी ये मंत्री तुम्हें नहीं रोक रहे हैं। अमात्य काम मृत्यो ही राजा का पथमाश्रिता निग्राह्याम सर्वथा संधि संग्राह्यो न गृहसे। श्रेष्ठ निशाचर, मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म अर्थ काम और यश पाते हैं। धर्मम अर्थम च कामम च यशश्चा जयतांबर स्वामी प्रसादान सचिवा प्राप्नुवन्ति निशाचर। रावण, यदि राजा की कृपा ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है, राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विपर्ये तु सर्वं व्यर्थं भवति रावण विष्णुं स्वामी वैगुण्यात् प्राप्नुवन्ति तरे जन। श्रेष्ठ राक्षस, धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है, अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। राजमूलो हि धर्मश्च यशश्च जयताम्बर तस्मात् सर्वास्वस्थासु रक्षितव्या नराधिपम्। हे राक्षस, जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता की अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला हो और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। राज्यम पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचरेण न चाति प्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षसेन। जो मंत्री तीखे उपाय का उपदेश करते हैं वे अपनी सलाह मानने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं। जैसे जिनके सारथी मूर्ख हों ऐसे रथ नीची ऊंची भूमि में जाने पर सारथी के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं। ये तीक्ष्ण मंत्रा सचिवाम भुज्यन्ते सहते नथा शीघ्र मंद सारथयो यथा। धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं। भावान साधवो लोके युक्त धर्मम अनुष्ठिता परिसम अपराधेन नष्टा स्वापरिच्छद। रावण तीखे स्वभाव वाले राजा से जो प्रजा है कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि गीदड़ या भेलिया भेड़िया भेड़ों को पालता है तो भेड़ें बढ़ती नहीं कभी। क्या करते हैं जो गीदड़ भेड़िए हैं वो क्या करते हैं भेड़ों को खाते रहते हैं तो भेड़ें कैसे बढ़ेंगे। स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजा तीक्ष्णेन रावण लक्ष्मण न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा। रावण जिनके तुम क्रूर और दुर्बुद्धि राजा हो वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। अवश्यम विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाम ये साम तुम कर्कशो राजा दुर्बुद्धि रजितेन्द्रियः। मुझे तुमसे अकस्मात ही ये घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में मुझे तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। तदिदं काकतालीयं घोरमासादितं मया अत्रतुं शोचनीयोऽसीं ससैन्यं विनशिष्यसीं। श्री राम मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है तब श्री राम के हाथ से होने वाली जो यह मृत्यु है इसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा। माम निहत्य तु रामो सा वचिरा तुम मदिष्यति अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रिये चाप्यरिणा हतः। राजन ये निश्चय समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊंगा और यदि तुमने सीता का हरण किया तो तुम अपने को भी बंधु बांधवों सहित मरा हुआ ही मानो। दर्शनान्देव रामस्य हतम माम अवधारय आत्मानम चाहतम विद्धि हृत्वा सीताम सबांधवम। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे तब तो न तुम जिंदा रहोगे और न मैं जिंदा रहूंगा। न लंकापुरी रहेगी न वहाँ के निवासी राक्षस ही रह पाएंगे। आनयस्यसि चेन् सीताम् आश्रमात् सहितो मया नैव तुमपि नाहं मै नैव लंका न राक्षस। निशाचर मैं तुम्हारा हितैषी हूँ इसीलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूँ तुम्हें, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है जिसकी आयु समाप्त हो जाती है वे मरणासन्न पुरुष अपने मित्रों की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं। निवार्यमानस्तु मया हितैषिणाम् नमृषसे वाक्यमिदं निसाचर परेत कल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृहणं देशुरेन्द्रीरितम्। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निसाचर के भय से दुखी हुए मारिच ने कहा चलो चलें। एवं उक्त्वा तु परुषं मारिचो रावणं ततः गच्छा वित्त ब्रवीन दीनों भयान रात्रिम चरे प्रभु। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री राम ने यदि मुझे फिर देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। दृष्टश्चाहम पुनस्तेन सरचापासि धारिणा मन्मधोद्यत शस्त्रेण निहतम जीवितम चंगे। श्री राम के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तो मारिच क्या कह रहा है कि कोई अगर अपना पराक्रम दिखाए राम को तो फिर जिंदा नहीं रहेगा। तुम यम दंड से मारे गए हो वे रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यम दंड के समान हैं। नहीं रामम पराक्रम जीवन प्रति निवर्तते
वर्तते पति रूपो सौम्यम दंड हतस्यते।
परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए तब मैं क्या कर सकता हूँ, लो ये मैं चलता हूँ, तात निशाचर तुम्हारा कल्याण हो।
किम नु कर तुम मया सक्यम एवं त्वयि दुरात्मनी एस गच्छाम्यहम तातम स्वस्ति ते स्तु निशाचर।
तो इस तरह से ये बड़ा जो है ना मार्मिक वर्णन है, मारीच रावण से जो है सब बातें समझा रहा है, लेकिन फिर रावण उसने समझ लिया कि रावण की जो बुद्धि है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। जैसे कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब किसी व्यक्ति का विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि उलट जाती है, इसलिए उसको अपने विनाश में ही कल्याण दिखाई दे रहा है। तो मारिच ने कहा कि ठीक है, अब तुम अगर यही चाहते हो तो अब मुझे जो है ना स्वीकार है। तो इस प्रकार से मारिच को निश्चित पता हो गया था कि उसकी मृत्यु जरूर होगी राम के हाथों, क्योंकि तो राम के विरुद्ध आचरण कर रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा पार्श्वार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।